वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 60।
यतोऽहि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः।
हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। आप लोग सब बोलिए
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन सलोकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यत तो यपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः, हे कुंती पुत्र, यत्न करते हुए भी पुरुष का जो कि विपश्चितः जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान पुरुष है वो यत्न करते हुए भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, मंथन करती हैं इंद्रियां और उसके मन को हरण कर लेती है, बलपूर्वक हरण कर लेती है। हरंती प्रसभम मना, बलपूर्वक उसके मन को हरण कर लेती है। बहुत बुद्धिमान होते हैं भी है? तो अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि बहुत से विद्वान हैं और ऋषि हैं और दार्शनिक हैं और अध्यात्मवादी हैं जो कि इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन उनका मन कभी कभी हरण हो जाता है इंद्रियों के द्वारा। तो आज के श्लोक में भगवान उनकी चर्चा कर रहे हैं जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं कई प्रकार से लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं है। बुद्धि बहुत है, अंतर है। अर्जुन ने पूछा था स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो तो वो अलग चीज है। बुद्धि का स्थिर होना अलग चीज है और बहुत बुद्धि होना अलग चीज है। तो किसी व्यक्ति की बहुत बुद्धि है, तो कई प्रकार के क्षेत्र हैं जिसमें लोग बहुत आगे होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आगे होते हैं लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं है। आप सुन रहे विपश्चितः शब्द बुद्धिमान के लिए आया है। तो बुद्धिमान पुरुष का जो मन है वो इंद्रिय हरण कर लेती है लेकिन जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है हो सकता है कि वो ज्यादा बुद्धिमान ना हो लेकिन बुद्धि स्थिर है उसकी इसलिए वो सुरक्षित रहता है, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान अंतर बता रहे हैं है? एक तो वो व्यक्ति जो स्थिर बुद्धि है और बुद्धि स्थिर किसकी होती है जो कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अन्यथा उसके पास बुद्धि बहुत है, उसके पास बुद्धि बहुत है लेकिन तो भी उसका मन विचलित हो जाता है। ये प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी गिनाते हैं, एक तो विद्वान है, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो लेकिन भक्त नहीं है। बहुत विद्वान है, विद्वत्ता होती है लोगों के अंदर, कई प्रकार के शास्त्रों में वो विद्वान बनते हैं, लेकिन चूंकि भक्त नहीं है इस कारण से उनका मन है हरण हो जाता है। जैसे कि कालिदास बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, संस्कृत के साहित्य में कालिदास का वैसे स्थान है जैसे अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का। यस, तो बहुत विद्वान कालिदास, उनके संस्कृत ग्रंथ अभी भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा कलंकित है। उनके जीवन में आगे पता नहीं चलता क्या हुआ। राजा भोज के समय के वो उनकी सभा के जो है विद्वान थे कालिदास, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। एक जो मेहतरानी थी उसका पता नहीं चला और इनका पता नहीं चला, दोनों का पता नहीं चला क्या हुआ कुछ पता नहीं। मतलब क्या है कि इंद्रियों ने मन को हरण कर लिया, और मन जब हरण हो गया तो उनके शरीर का भी पता नहीं चला। तो कालिदास का जो अंतिम जीवन चरित्र है वो अज्ञात है, कहां चले गए, कहां भाग गए। सोचो इतना बड़ा विद्वान है ना, तो ये विद्वान है, विद्वानों का मन हरण हो जाता है और उनका भी पता नहीं चलता है। माया कैसे उड़ा देती है एक फूंक में। ये कहते हैं कि भ्रुकुटी के सारे से ही उनको उड़ा देती है, उड़ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। बड़े बड़े विद्वान ऐसे हो जाते हैं है? उसी प्रकार से ऋषि, ऋषियों में भी बड़े बड़े ऋषि हैं जिनको कि माया देवी ने उड़ा दिया है ना एक इशारे से। जैसे कि विश्वामित्र मुनि है, तो कहते हजार साल तक तपस्या की, या 10,000 साल या 60,000 साल जो भी हो, विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की है। मेनका उनका तप भंग करने के लिए आए, तो उसके चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनकर के उनका मन हरण हो गया विश्वामित्र। क्यों? क्योंकि भक्त नहीं थे ना? तो बहुत तपस्वी हैं है ना, बहुत बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े दार्शनिक। तो उनका भी जो ना यही हाल है, दार्शनिक है और अध्यात्मवादी है। तो मतलब कहने का यह है कि हर प्रकार के लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत आगे हैं अपनी बुद्धि में, बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि भगवान मन स्थिर नहीं किया इसलिए उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, और इस कारण से वो जो है गिर जाते हैं, माया में गिर जाते हैं है? तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है ना, तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान क्यों ना हो, बहुत शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, तपस्वी हो है ना, कुछ भी हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो स्थिर बुद्धि है। ये जरूरी नहीं है कि वो स्थिर बुद्धि है। सोचिए जैसे अभी आजकल भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं है ना, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका चरित्र अगर देखा जाए तो वैसा ही दूषित ही चरित्र होता है, कोई पवित्र चरित्र नहीं है। बहुत आजकल भी शिक्षित लोग हैं और शिक्षा संस्थाओं में भी है? जो लड़के हैं जो काफी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े हुए हैं, उनका भी चरित्र अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं है, जबकि पढ़ाई लिखाई में काफी आगे बढ़े हुए हैं। तो भी तो मतलब कहने का यह है कि पुरुषस्य विपश्यतः, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो लेकिन उसका भी मन इंद्रियां हरण कर लेती हैं, बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। और जबकि कोई मूर्ख भी क्यों ना हो, मूर्ख से मूर्ख भी भगवान का भजन करे तो सुरक्षित। जैसे कि हरिदास ठाकुर है ना, मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे हरिदास ठाकुर, है? लेकिन भगवान के चरणों में मन को लगाया था, इसलिए हीराबाई नाम की बड़ी सुंदर वेश्या उनके पास आई और आधी रात में आई है? और पूरा उसने उनको अवसर दिया है? और उन्होंने भी डरे नहीं, हरदास ठाकुर डरे नहीं और कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपका इरादा बहुत अच्छा है, है? और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप मुझे अवसर दे रही हैं, लेकिन आप कृपा करके प्रतीक्षा करो और मेरा जो नियम है वो पूरा हो जाए, नाम जप की संख्या पूरी कर लूं, उसके बाद फिर आपकी भी बात सुनूंगा। इस तरह से उसको उन्होंने रात भर बिठाया और नाम जप किया। सवेरा हो गया, माफी मांगी कि माफ करो, हमारा तो पूरा हो ही नहीं संख्या, आप कल रात में आइए कृपा करके। तो सवेरा हुआ, चली गई वो, अगली रात को फिर आई, फिर बैठाया उसको और बोला, कहा कि बस हमारा संख्या पूरी हो जाए फिर हम आपकी बात सुनेंगे। इसके बाद फिर रात भर जाप करते रहे, माफ करो हमारा तो पूरा संख्या पूरी नहीं हुई, आप अगली रात को आइए। तीसरी रात को फिर आई, फिर ऐसे करते रहे और तीन रात लगातार उसने नाम का कीर्तन सुना और उसकी बुद्धि बदल गई, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और अब वो बोली कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी उस संसार में जहां से तुमने मुझे निकाला है। ठाकुर, मैं तुमको उस संसार में गिराने के लिए आई थी, तुमने मुझे निकाल दिया संसार से बाहर, अब मुझे इस संसार में वापस नहीं गिरना है, अब मुझे अपने चरणों की शरण दो। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इसीलिए मैं इस कुटिया को छोड़ के नहीं गया था, अभी तक मुझे पता था कि रामचंद्र खान ने क्या योजना बनाई है और तुम किस लिए मेरे पास आई थी, मुझे पता था और मैं चाहता तो चला गया होता, लेकिन मैं नहीं गया था, मैं इसी की प्रतीक्षा में था, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और अब तुम यहां रहो, तुम्हारा जितना धन संपत्ति है उसको साधु संतों की सेवा में लगाओ, अपना घर छोड़ करके इधर रहो और 3 लाख नाम की संख्या पूरी करो, यहां पर तुलसी का वृक्ष है और बस तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो उस हीराबाई वेश्या को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और वो चले गए और हीराबाई को हरदास ठाकुर की कुटिया में रहने लगी और वो महान भक्त बन गई और वो उसकी पूजा होने लगी। रामचंद्र खान जो कि हरदास ठाकुर को बदनाम करना चाहता था और उनको बदनाम करने के लिए ही हीराबाई नाम की सुंदर वेश्या को भेजा था, उसकी योजना में पानी फिर गया। हरदास ठाकुर तो गिरे नहीं बल्कि उस वेश्या को भी उन्होंने पवित्र कर दिया। तो ये मतलब है कि बहुत अधिक शिक्षित नहीं है हरदास ठाकुर और किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत बड़े विद्वान या बुद्धिमान या निपुण नहीं थे, लेकिन केवल भगवान के चरणों में मन को लगाने से देखो माया को जीत लिया। और दूसरी घटना और भी है, चैतन्य चरितमानस में बताया गया है कि साक्षात माया देवी उनके पास आई, उनकी परीक्षा लेने के लिए आई हरदास ठाकुर की। और सोचो अगर माया देवी अपना रूप बनाए तो कैसा रूप होगा वो, अगर माया देवी खुद अपना रूप बनाए तो उसने जो है कई प्रकार की अपनी चेष्टाएं की हरदास ठाकुर के सामने और कई प्रकार की मुद्राएं दिखाई उसको, लेकिन हरदास ठाकुर यही कहते रहे कि मेरा नाम संख्या अभी पूरा नहीं हुआ। और इस तरह से 3 रात तक उसको भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनाते रहे और वो जो माया देवी है उसने भी उनको समर्पण कर दिया और बोली कि हरदास ठाकुर अब मैं मुझे अपना शिष्य बनाओ, शिवजी ने मुझे राम मंत्र की जरूर दीक्षा दी है, लेकिन अब मैं तुमसे इस कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेना चाहती हूं। तो हरदास ठाकुर से माया देवी ने, साक्षात माया देवी ने हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। सोचो कैसा आश्चर्य, ऐसे व्यक्ति से जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, हरिदास ठाकुर को नहीं कहा जाता है कि कोई बहुत बड़े विद्वान थे या शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं। तो भी तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानवान हो, चतुर हो और निपुण हो, कई चीजों में निपुण है, वो तो गिर जाता है माया के सामने, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये लिखा तात्पर्य में कि किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्वामित्र जी की तपस्या का उद्देश्य क्या था? तपस्या का उद्देश्य था कि मैं ब्राह्मण बनूं, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहते थे। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण क्या है? समो नमस्तपः शौचम शांतिरार्जम एवचार ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम सम दम तप शौच। तो सम का मतलब मन का श्रवण और दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन, है ना। तो वो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है, मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, है? तो ब्राह्मण बनने के लिए विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे और तो भी उनका ये प्रयास बिल्कुल असफल रहा। मेनका के कारण वो जो है गिर गए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण गाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्य बंद नहीं कर सकता। ये क्या बताने प्रभुपाद, मन को जब तक कृष्ण में ना लगाया जाए तब तक व्यक्ति जो है इंद्रियों के जो है वेग को सहन नहीं कर सकता। तो मन जब कृष्ण में लगता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है, है? तो देखिए श्लोक संख्या 62 में इसी अध्याय के श्लोक संख्या 62 में भगवान क्या बता रहे हैं कि ध्याय तो विषयान कौन सा संगस्थे सुख जाएंगे। जब मन से वो विषयों का ध्यान करता है, कोई व्यक्ति अगर मन से विषयों का ध्यान करता है तो उनमें संग यानी आसक्ति पैदा हो जाती है। संगात संजायते काम, आसक्ति से कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। कामात क्रोध हो भी जायते और उस कामना से क्रोध पैदा होता है ना। कामात क्रोध हो भी जायते, जब कामना व्यक्ति की जो है अगर कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है ना। या जैसे विश्वामित्र जी एक बार तो मेनका के द्वारा गिर गए, लेकिन दूसरी बात फिर रंभा नाम की अप्सरा आई, इंद्र ने फिर भेजा विश्वामित्र जी के पास कि अभी ये दोबारा तपस्या में लगे हैं तो अब तुम जो है इनका पतन करो। तो रंभा बहुत डर रही थी कि बहुत बड़े ऋषि हैं, अगर वो गुस्सा हुए तो सांप दे देंगे। और ऐसा ही हुआ, इस बार रंभा आई तो विश्वामित्र जी जो है ना समझ गए कि मुझको जो है ये गिराने के लिए आई है, तो उन्होंने बड़ा गुस्से होकर के सांप दे दिया, रंभा को सांप दे दिया। अब याद नहीं आ रहा क्या सांप दिया रंभा को, पत्थर बन जाओ या क्या बन जाओ, कुछ ऐसा सांप दिया रंभा को। लेकिन उस क्रोध के कारण भी वो जो है उनका जो पूरा मन है वो जल रहा था क्रोध की अग्नि में, मतलब अशांत हो गए। तो कामात क्रोध हो भी जाए थे, अगर वो व्यक्ति काम को वश में करता है तो फिर क्रोध है पैदा हो जाता है ना। तो क्रोध के कारण भी वो व्यक्ति जो है अपनी साधना से गिर जाता है। तो ये भी मतलब है कामात क्रोध हो भी जाए थे और क्रोधात भवत सम्मोहा, क्रोध से व्यक्ति बिल्कुल सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और इस सम्मोहन से यानी पागलपन से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से वो नष्ट हो जाता है। उसका पतन हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणशति, किस तरह से बुद्धि के नाश होने से उसका पतन हो जाता है। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान क्यों ना हो, ये इंद्रियां उसके मन को हरण कर लेती हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, कि मनुष्य किसके द्वारा लगाया हुआ पाप कर्म का आचरण करता है। अनिच्छिन्न पे वार्ष्णे बलादेव नियोजित है, हे वार्ष्णे वो इसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन बलपूर्वक जैसे कोई से पाप में लगा रहा हो ऐसा जो है कौन है जो से पाप में लगा रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समन भवा है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध है, महाशनो महापापमा विद्यनम ही वैरिनम, ये इसी को ही शत्रु जानो। रजोगुण से पैदा हुआ काम क्रोध है ना। फिर आगे भगवान कहेंगे इंद्रियाने मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उचते, ये जो काम रूपी शत्रु है इसका निवास स्थान इंद्रिया मन और बुद्धि है। इंद्रिया मन और बुद्धि इसका निवास स्थान है ना। ये तैर विमोहित से ज्ञानम आवृत देहिनम, और यही से ये शत्रु जो है ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को पागल बना देता है। तस्मा तुम इंद्रियाण न्यादो नियम भरत अर्षभ, फिर भगवान कहते हैं इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को बस में करके, हे अर्जुन सबसे पहले अपने इंद्रियों को बस में करके पापमानम प्रजयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस पापी को तुम मारो, इस पापी शत्रु को तुम मारो, काम रूपी शत्रु को मारो। तो ये अब देखिए इंद्रियाणि, आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभमनः, ये काम रूपी जो शत्रु है इंद्रियों में बैठा हुआ है। और कोई व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को नहीं लगाता भगवान की सेवा में, इंद्रियों को बस में नहीं करता, ये शत्रु को नहीं मारता, तो इंद्रियां मन को हरण कर लेती हैं, और फिर जो मन है वो बुद्धि को हरण कर लेता है ना। वही इंद्रिय जो है मन को हरण कर लेती है, और वही फिर जो मन है वो बुद्धि को हरण कर लेती है। देखिए बुद्धि को हरण करती है इंद्रिय, इसको देखिए एक श्लोक है इसमें, श्लोक संख्या 67 इसी अध्याय का, श्लोक संख्या 67 इसमें भगवान क्या कहते हैं, आज के श्लोक में तो भगवान ने कहा कि इंद्रियां मन को हरण करती हैं, लेकिन 67वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि उसकी बुद्धि को भी इंद्रिय हरण कर लेती हैं। कैसे, 67वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनु विधीयते, इंद्रियां जो है जो विश्व में लगी हुई हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, उन इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है यानी मन भी चिंतन करता है उस विषय का, तो वो इंद्रिय उसकी बुद्धि को हरण कर लेती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम, वो इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है वायुर्नाभम एवं भसी, जिस प्रकार से वायु नौका को जल में हरण कर लेती है, पानी में जब नाव चलती है तो हवा के द्वारा नाव कहां की कहां ले चली जाती है और पता नहीं चलता है ना, पानी में पता नहीं चलता कि नाव कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, पता नहीं चलता है। और हवा ले जाती है कहां से कहां ले जाएगी नौका को, है ना। तो उस प्रकार से जो है पता नहीं चलता है, इंद्रिय कैसे बुद्धि का हरण कर लेती है ना। तो इस तरह से आप क्रम समझ सकते हैं कि इंद्रिय मन और बुद्धि ये क्रम है। जिस इंद्रिय के साथ मन होगा तो मन का हरण जब हो जाता है तो फिर बुद्धि का भी हरण हो जाता है। अच्छा आगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं हम सुनेंगे। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं अभी जो श्लोक प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं इसको प्रभुपाद कई बार उद्धृत करते हैं, कई स्थानों पर उद्धृत करते हैं। यदि मम चेता कृष्ण पादारविंदे नव नवरस धाम रंतुमासीन तदवधि मत नारी संगम स्मर्य माने भवति मुख्य विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। क्या कह रहे हैं यामुनाचार्य? आप लोग जानते हैं यामुनाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य के गुरु है, कृष्ण के चरण कमलों में नवीन रस को प्राप्त कर रहा है। तब से क्या हो गया मुझको स्त्री का जो सुख है उसके बाद दिमाग में आते ही मुख में विकार पैदा होता है और मैं थूकता हूं, इस विचार पर थूकता हूं। तो ये मतलब ये है व्यवहारिक विरक्ति, कितनी व्यवहारिक है। जबकि पिछले श्लोक में भगवान ने भी बताया था कि कोई व्यक्ति अगर विश्वों से दूर रहता है ना, तो ठीक है वो विषयों को तो छोड़ देता है, विषय तो उसे दूर हो जाते हैं लेकिन उसमें रस नहीं दूर होता है, उसकी जो है इच्छा रहती है, भोगों की इच्छा बनी रहती है। इन आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हाँ और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति वो सब विषयों को छोड़ने के बावजूद भी कभी अगर उसके सामने विषय भोग आते हैं तो उसका मन फिर बलपूर्वक हरण हो जाता है। और एक भक्त के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि उसके सामने भोग वासना के विचार आते हैं तो भी वो उसको बड़ी अरुचि होती है, इन चीजों में बड़ी अरुचि होती है, थू थू करता हूं। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। अब यहां पर प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा है उसको बहुत सुंदर व्यंजन मिल गए, खा लिया है ना, अब उसकी खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भूखा है उसको आप भोजन देते हैं क्योंकि वो बहुत भूखा है, अगर उसको पता भी चलता है कि मान लो भाई इसमें कुछ मिलावट है, थोड़ा बहुत अगर कुछ गलत चीजों की भी मिलावट है, जहरीला भी है, तो वो खाता है। क्यों? बहुत भूखा है, क्योंकि बहुत भूखा है इसलिए भोजन में अगर वो उसको पता भी चल जाए कि कुछ जहरीली चीजें भी इसमें मिली हुई हैं तो भी वो खाता है क्योंकि भूखा है ना। तो ये अंतर है कृष्ण भक्ति के रस से, क्योंकि वो तृप्त है, तृप्त है, संतुष्ट है, इस कारण से विषय रस को जो है ना वो नहीं लेना चाहता। उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ खा करके संतुष्ट हो गया तो जहरीला भोजन वो खाना नहीं चाहता। जहरीला भोजन वो क्यों खाएगा? उसने खा लिया, अच्छा उसका खूब पेट भरा हुआ है ना, तो नहीं खाना चाहता है ना। और बाकी इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं वो भूखे हैं, उन्हें कुछ सुख चाहिए, सुख चाहिए है ना। तो चूंकि उनको भक्ति का रस नहीं प्राप्त हो रहा है इसलिए विषय रस को भोगना चाहते हैं, जबकि उसमें उनको दुख मिल रहा है। यद्यपि उसको विषय भोगों में दुख की प्राप्ति हो रही है लेकिन तो भी वो व्यक्ति उन विषयों में फंसा हुआ है और उनको छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जो कुछ सुख प्राप्त हो रहा है उसको पाना चाहता है। बदले में कितना भी दुख भोगे लेकिन वो फिर भी विषयों को नहीं छोड़ता, जबकि वो विषय है। इसलिए कल भी मैंने एक श्लोक उद्धृत किया था शंकराचार्य जी का, सुखतः क्रियते राम भोगा पश्चादंत शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुञ्चति पापाचरणम। शंकराचार्य कहते हैं कि सुखतः क्रियते राम भोगा, ये जो विषय भोग है उनको तो बहुत मजे से भोगता है, बिना कोई सिखाए, कोई उसको सिखाता नहीं है लेकिन तो भी वो सीख जाता है सब भोगों को भोगना है। और पश्चात अंत शरीर ही रोग, और अंत में शरीर में रोग होते हैं, और रोग होने के बावजूद भी और उसको मृत्यु भी दिखाई पड़ रही है ना, इन तो भी वो व्यक्ति पाप का आचरण नहीं छोड़ रहा है, विषय भोग नहीं छोड़ रहा है, उसको मृत्यु दिखाई दे रही तो भी विषय भोग नहीं छोड़ रहा है। कोई शोर नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। जैसे कि महाराज पांडु को शाप मिला था किंगिम ऋषि के द्वारा, उन्हें शाप मिला था, उन्होंने भूल से किंगिम ऋषि को हरण समझ करके बाण मार दिया था। कुंती और माद्री उनके साथ थी और उन्होंने निश्चित कर लिया था कि अब किसी प्रकार का भोग नहीं करना है, लेकिन फिर जंगल में जब माद्री को देखा एकांत में तो जानते हुए कि सांप है ऋषि का, और उन्होंने जो है माद्री का आलिंगन किया और उनकी मृत्यु हो गई जानते हुए। ये देखो भगवान बता रहे हैं कि पुरुष से विवर्षिता व्यक्ति जानता है और जो है बहुत बुद्धिमान है, जानता है, लेकिन इंद्रियों ने मन को हरण कर लिया, जानबूझ करके वो मारे गए, मर गए। इसी प्रकार से महाराज सौदास को भी एक ब्राह्मण ने श्राप दिया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि के हिसाब से वो 12 साल के लिए राक्षस बन गए, और राक्षस कैसे, नरभक्षी राक्षस, मनुष्य का मांस खाने वाले। तो एक बार रात में जो है ना एक ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ दिया खाने के लिए, और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ था उस समय, तो उनकी पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि अभी हमारे पति को आप मत खाइए, क्योंकि अभी वो ऐसी अवस्था में है, तो आप तो राजा हैं, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन चूंकि राक्षस भाव में थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को खा लिया, तो उस ब्राह्मण की हड्डियों को इकट्ठा करके ब्राह्मण पत्नी चिता में जल गई, क्षति हो गई, लेकिन जलते जलते उसने श्राप दिया राजा को कि अब मैं श्राप देता हूं कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ हो गए तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज सौदास की पत्नी थी मदयंती, तो जब मदयंती को पता चला और महाराज सुदास भी जो श्राप से जब मुक्त हुए 12 साल के बाद, तो अपने महल में आए और जानते ही भी कि उन्हें श्राप मिला है, वो अपनी पत्नी के पास जब जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने अपने मन को बस में किया और महाराज को रोक दिया कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, और अपने पति की रक्षा कर ली, ये तो महाराज सौदास मर गए होते, पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा मत करिए। तो पत्नी की जो है तपस्या से महाराज सौदास की प्राण रक्षा हो गई, नहीं तो वो भी मर गए होते। तो मतलब कहने का ये है कि इंद्रियां जो है इतनी बलवान है, इतनी चंचल है, इतनी मंथन करने वाली है कि वो बलपूर्वक बुद्धिमान व्यक्ति के मन का भी हरण कर लेती है। लेकिन भक्ति के लिए जो तो क्या कह रहे हैं, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्थात नष्ट आए थे। ये इंद्रिया जो दुर्दांत है, मतलब जिनको बस में करना बहुत कठिन है, और ये सर्प सर्पिणी के समान है, इंद्रियां सर्पिणी के समान है ना। लेकिन इनके विषैले दांत ही उखड़ गए तो अब कोई डर नहीं रहा। अगर सांप के विषैले दांत उखाड़ दिए जाएं तो फिर वो सांप खतरनाक नहीं होता है, और उसको फिर बस में करने की जरूरत नहीं है। वो तो कितना भी काटे, उसके विषैले दांत निकल गए हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से इंद्रियों को फिर बस में करने की जरूरत नहीं है। जो भक्त है उसकी इंद्रियों को बस में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इंद्रियों में ये जो राग द्वेष है वो निकल चुका है ना। जो इंद्रियों में जो राग द्वेष था वो निकल चुका है ना। एक प्रकार से समझिए कि जो भक्त है वो रजोगुण से ऊपर उठ जाता है। इसलिए इंद्रियों में जो काम है, काम शत्रु है, वो जो कि नष्ट हो चुका है, इस कारण से उस इंद्रियों से कोई खतरा नहीं होता। जो बड़े बड़े योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, उनको अपनी इंद्रियों से बड़ा खतरा रहता है, लेकिन जो भक्त है उसको अपनी इंद्रियों से कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि इंद्रियों में जो काम शत्रु है वो नहीं रहा। दूसरे शब्दों में उसकी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, उसकी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, इस कारण से उसमें कोई खतरा नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके, क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अब देखिए, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज, इन दो की तुलना प्रभुपाद जी कर रहे हैं। दुर्वासा मुनि क्या है, बहुत बड़े तपस्वी है ना। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं। दुर्वासा का मतलब जानते क्या होता है, कोई जानता है दुर्वासा का मतलब क्या है? दूरवा, दूरवा समझते हैं, घास। दूरवा का मतलब है घास। आशा का मतलब खाने वाला। जो व्यक्ति दूरवा खाए, दूरवा घास, घास का रस पीते थे, तो वो दुर्वासा मुनि। सोचो कितनी तपस्या है, जो दूरवा का रस पीता है वो तो दुर्वासा है। कितने तपस्वी हैं दुर्वासा मुनि। और अम्बरीश महाराज की ऐसी कोई तपस्या नहीं है, वो तो 56 प्रकार के भोग हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और फिर खाते प्रसाद भगवान को, तो उनकी कोई तपस्या नहीं। और दुर्वासा मुनि इतने तपस्वी, दुर्वा का रस पी करके रहते हैं, उनका शरीर एकदम दुर्बल हो चुका है तपस्या के कारण, है ना। इन अम्बरीश महाराज ने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाया हुआ है ना, इसलिए उनमें काम नहीं है, क्रोध नहीं। दुर्वासा मुनि ने काम को तो जीत लिया, लेकिन क्रोध है, क्रोध को नहीं जीत पाए ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि अम्बरीश महाराज की विजय हुई दुर्वासा मुनि के ऊपर, तो उनके अंदर काम और क्रोध दोनों ही नहीं है। तो आप लोग घटना जानते हैं कि अम्बरीश महाराज के महल में दुर्वासा मुनि आए। किस समय आए? सवेरे के समय आए। उसके पहले दिन एकादशी का व्रत किया अम्बरीश महाराज ने, तो अगले दिन सवेरे पारण कर रहे थे, एकादशी का पारण कर रहे थे, तो व्रत को तोड़ना जरूरी होता है। उसी समय दुर्वासा मुनि आए, तो अम्बरीश महाराज ने उनको जो भोजन कर रहे थे वो दुर्वासा मुनि की सेवा में दिया कि आप ग्रहण करिए। तो दुर्वासा मुनि तो जो है एकादशी का व्रत नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बैठो अभी और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी यमुना जी में स्नान करने जा रहा हूँ, जब स्नान करूंगा तब फिर भोजन करूंगा, उसके बाद तुम भोजन करोगे। अम्बरीश महाराज का जो आ गया। अब जब देर लगा रहे दुर्वासा मुनि, उनको चिंता हुई कि पारण का समय निकल रहा है, है? क्योंकि पारण का समय हम लोग बताते हैं ना कि भाई इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही आपको व्रत तोड़ना है। अब दुर्वासा मुनि अगर देर करें तो अम्बरीश महाराज क्या करें, उनको पारण करना है। तो ब्राह्मणों की सभा बुलाई और ब्राह्मणों के सामने अम्बरीश महाराज ने ये बात रखी कि देखिए अगर मैं पानी पी लूं तो उससे खाया भी माना जाएगा और खाया नहीं भी माना जाएगा। तो निर्जल एकादशी, क्योंकि उन्होंने निर्जला एकादशी करी थी, तो पारण पानी से भी कर सकते। अगर निर्जला कोई एकादशी करता है, पानी भी नहीं पीता एकादशी को, तो पानी पी करके भी पारण कर सकता है। अगर कुछ ना मिले अन्न वगैरह तो पानी पी करके भी पारण कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज ने पानी पी करके पारण कर लिया और दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब वो भोजन करेंगे तो फिर मैं भी भोजन करूंगा। तो दुर्वासा मुनि बहुत देर लगा करके आए। जब आए बहुत देर से तो अम्बरीश महाराज की चेष्टाओं से उन्होंने जान लिया कि इसने जल पिया है ना। तो बहुत गुस्सा हुए, तुम इतने दुष्ट हो, तुम बहुत घमंडी हो, हैं? मुझे बिना खिलाए पिलाए तुमने जल पिया है, हैं? मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूं। इस तरह दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से में कांप रहे थे और अपने सिर में जटा की एक लट उखाड़ करके और जमीन में पटकी और उससे एक कृत्या उत्पन्न हुई, बड़ी भयानक कृत्या। हाँ, अग्नि के समान जलती हुई वो कृत्या उसके हाथ में त्रिशूल था, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन अम्बरीश महाराज को क्रोध भी नहीं है, वो विनम्र भाव से खड़े हैं, भाई ये तो ब्राह्मण है, ये तो हमारे पूजनीय है, जो सही बोले या गलत बोले हमें तो इनके सामने झुकना ही है। इस तरह से अम्बरीश महाराज झुके हुए खड़े थे और भगवान का चक्र तुरंत आया और कृत्या को तो तुरंत मार डाला। भगवान का चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए आया, कृत्या को तुरंत मार डाला और अब दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। उस समय दुर्वासा मुनि भागे, तो जिस स्थान में जाए भगवान का चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लगा हुआ है। तो दुर्वासा मुनि यहां तक कि सुमेरु पर्वत की घाटी में भी पहुंचे जहां कि सूर्य का प्रकाश कभी नहीं जाता है, घोर अंधकार है। लेकिन सुदर्शन चक्र में तो हजारों सूर्य का प्रकाश है, इस दर्शन चक्र को कोई कठिनाई नहीं है। दुर्वासा मुनि के पीछे लगा हुआ है। जब दुर्वासा मुनि को कोई जगह नहीं मिली तो शंकर जी के पास गए हैं और कहा त्राही माम त्राही माम। शंकर जी कहते हैं कह रहे हैं ये भगवान का चक्र है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, अगर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो मेरा भी लोक जल जाएगा, फिर मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा, इसलिए तुम जाओ भैया, यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, बल्कि पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो विष्णु का चक्र है, मैं कैसे रक्षा करूंगा, जाओ जाओ भैया हमारे स्थान को बचाओ जाओ। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने भी ऐसे उत्तर दिया। फिर शिव जी ने कहा कि देखो भैया तुम जाओ विष्णु जी के शरण में, उनका चक्र है, वही रक्षा कर सकते हैं। तो फिर जब विष्णु के शरण में गए वैकुंठ में तो भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र विजय। देखो भक्त की इंद्रियां तो छोटी चीजें, भगवान तक बस में होते हैं। भक्त के बस में तो भगवान है, फिर इंद्रियां क्या करेंगे उसका। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र कि है द्विज, मैं भक्ति के पराधीन हूं, मैं तो भक्ति के बस में रहता हूं, बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है मेरे अंदर, या स्वतंत्र द्विज। जैसे मेरे पास बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। मतलब कहने का यह है, भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भक्त के बस में हूं। तो भक्त के बस में होने के कारण भगवान फिर सही गलत कुछ नहीं देख पाते हैं, वो केवल एक दिखाई पड़ता है कि मेरे भक्त का अपराध हुआ है, इसलिए वो फिर माफ नहीं करते किसी को। भगवान का ये कहना है, दुर्वासा मुनि उनके शरण में पड़े हैं और ये कहा जाता है भगवान को अशरण शरण, जिसकी कोई शरण नहीं है उसको शरण देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी काम नहीं चल रहा। दुर्वासा मुनि को कहीं शरण नहीं मिल रही तो भगवान की शरण ले रहे हैं, लेकिन भगवान शरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि भगवान क्या है, भक्त के बस में है। अभी भगवान का भी दिमाग काम नहीं करता है, जब भक्त का अपराध होता है तो भगवान का भी दिमाग काम नहीं करता है, है? और भगवान भी जो है शरण नहीं दे सकते कोई उनके शरण में आए तो भी, है? तो भगवान कहते हैं है? यह स्वतंत्र दे, अभी मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, मतलब अपने होश में नहीं हूं। भगवान कहने का ही मतलब मैं अपने होश में नहीं हूं, तो मेरे भक्त का अपराध हुआ है इसलिए। साधु फिर ग्रस्त है, देव मेरे हृदय ग्रस्त है साधुओं के द्वारा, साधु मेरे हृदय को ग्रस्त कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। भक्तैर भक्त जन प्रिया, मैं भक्तों का प्रिय हूं, है ना। फिर भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से, तपो विद्या से विप्राणाम निश्रेष करे उभे, कि विप्रों के लिए जो तपस्या और विद्या है ये बड़ी कल्याणकारी होती है। पहले तो भगवान ने द्विज कहा फिर विप्र कहा। ब्राह्मण के तीन स्तर हैं, पहला स्तर है द्विज, दूसरा है विप्र और तीसरा होता है वैष्णव। द्विज से ऊपर विप्र है और विप्र से ऊपर वैष्णव होता है। अम्बरीश महाराज तो वैष्णव है, जबकि दुर्वासा मुनि द्विज के धरातल पर या विप्र के धरातल पर है। द्विज के धरातल पर कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तपस्वी होता है, ना? और विप्र के धरातल पर कोई व्यक्ति तपस्या और विद्या का अभ्यास करता है, शास्त्रों का अभ्यास करता है, तो विप्र आगे है। तो भगवान कहते हैं विप्र के लिए तपस्या और विद्या तो कल्याणकारी है, लेकिन वो दुर्विनीत अगर हो जाए तयेव दुर्विनीत से कल्पेते कर्तुम अन्यथा, अगर वो दुर्विनीत हो जाए मतलब अगर भक्त का अपराध करे, वैष्णव का अपराध करे, तो ही तपस्या और उसकी जो विद्वत्ता है वो उसका ही है उल्टा करते हैं। मतलब ये कल्याणकारी है तपस्या और विद्या, लेकिन जब भक्त का अपराध होता है तो फिर यही तपस्या और विद्या उसके लिए विनाशकारी हो जाती है, उसका ही नुकसान होता है अपनी तपस्या और विद्या के द्वारा। तो इस तरह से भगवान ने दुर्वासा मुनि को जब जवाब दिया और भगवान ने कहा कि तुम अम्बरीश महाराज के शरण में जाओ जिनका तुमने अपराध किया है ना, और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की शरण में गए। और अम्बरीश महाराज पहले से ही अपने को छोटा समझते थे, दुर्वासा मुनि जब उनके चरणों में गिरे तो अम्बरीश महाराज को बड़ी लज्जा आई, उनको घमंड नहीं आया कि देखो मेरा अपराध किया था और अब आए मेरे पैरों में गिर रहे हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। अम्बरीश महाराज ने ये नहीं सोचा है, अम्बरीश महाराज को बड़ी शर्म आ रही थी और एक साल पूरा बीत गया था। दुर्वासा मुनि भागते रहे, अम्बरीश महाराज एक साल तक पानी ही पी करके रहे कि भाई ऋषि को जो ना भोजन नहीं कराया है मैंने तो मैं कैसे भोजन करूं, तो एक साल तक बेचारे पानी पी करके रहे। और जब दुर्वासा मुनि उनके चरणों में गिरे तो उनको बड़ी शर्म आ रही थी और वो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर रहे थे कि आप शांत हो जाओ, ये तो हमारे कुल देवता हैं। और इस तरह से जो है सुदर्शन चक्र शांत हुआ और दुर्वासा मुनि ने फिर एक भक्त का प्रभाव देखा कि भक्त में कितना प्रभाव है, मतलब उसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, है ना, काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, मद घमंड नहीं है और ईर्ष्या नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छह शत्रुओं से मुक्त है भक्त, है ना। तो ये भक्त की जो है ना विशेषता है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि के ऊपर विजय प्राप्त की। तो आज के श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि बहुत बड़ा व्यक्ति जो विद्वान ही क्यों ना हो है? उसकी भी इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को हरण कर लेती हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमको कि जो भक्त है वही इन इंद्रियों के बस में नहीं होता है, बाकी जितने भी बड़े बड़े योगी हैं तपस्वी हैं वो सब इंद्रियों के बस में हो जाते हैं। अब दुर्वासा मुनि काम के बस में नहीं हुए तो क्रोध के बस में हो गए, और क्रोध के बस में ही उनकी इंद्रियां एकदम कांप रही हैं, पूरे शरीर में जो है उनकी जो इंद्रियां हैं वो व्यथित हो रही हैं, क्रोध की अग्नि से जली जली जा रही हैं। तो ये अंतर है भक्त में और अभक्त में, ये अंतर है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा तपस्वी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, बहुत बड़ा दानी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर सकता है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो इंद्रियों को वो बस में नहीं कर सकता है। कोई प्रश्न किसी का? आपका विप्र और
विप्र
नहीं द्विज विप्र वैष्णव, इनका प्रश्न है ब्राह्मण के तीन स्तर हैं, ब्राह्मण के तीन स्तर हैं द्विज विप्र और वैष्णव। द्विज सबसे पहला धरातल है ब्राह्मण का, जिसमें तपस्या होती है, नियमों का पालन करता है, पवित्रता के नियमों का पालन करता है, है ना, तपस्या है, पवित्रता है ना, तो ये सब जो है ना द्विज के लक्षण होते हैं। फिर इसके भी आगे कोई यदि ब्राह्मण उन्नति करता है तो विप्र बनता है, और विप्र में ये शास्त्रों का अभ्यास करता है, ज्यादा शास्त्र ज्ञान का अभ्यास करता है तो विद्वान हो जाता है ना। तो विप्र में तपस्या तो होती ही है लेकिन साथ साथ विद्या भी होती है ना, तो वो विप्र कहलाता है। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है और जो है उसमें कुछ अभ्यास करता है शास्त्रों का, है ना, तो ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है तो विप्र कहलाता है। और फिर इसके भी ऊपर होता है वैष्णव, जो कि भगवान के प्रति समर्पण करें, है ना, तो उसमें विनम्रता होती है, बहुत विनम्रता होती है वैष्णव में, तो वो ब्राह्मण की सबसे ऊंची स्थिति है वैष्णव में, है ना, भगवान की भक्ति। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए एकादशी का व्रत संभव नहीं है कलयुग में करना, जितने नियम बताए गए हैं उन सब नियमों का पालन नहीं किया जा सकता कलयुग में, लेकिन एकादशी के दिन अन्न खाने में दोष होता है, अन्न खाने में पाप लगता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग अन्न नहीं खाते एकादशी के दिन, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना कोई ज्यादा नियम नहीं है एकादशी के दिन की हम बहुत कुछ नियमों का पालन करें, लेकिन बस यही है कि एकादशी का दिन पवित्र है, उस दिन हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, है? और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, है ना, तो यही अपना जो है ज्यादा समय दिया जाए आध्यात्मिक कार्यों में। एकादशी को आप अन्न ना खाइए, अन्न ना खाइए, बाकी आप खा सकते हैं जैसे दूध है ना, और फल है, फलों का रस है, नींबू पानी है, है साख सब्जी, कुट्टू आटा, सिंघाले आटा की पूड़ी, साबूदाना, है ना, और वो चावल आते हैं ना, समा के चावल आते हैं, वो ले सकते हैं। तो इस तरह से कई चीजें एकादशी को हम लोग खाते हैं, लेकिन अन्न नहीं, जैसे दाल है, चावल है, आटा है, चपाती है ना, ये नहीं लेना, और फली नहीं लेना, फली बीन्स जैसे मटर की फली है, है? ये भी नहीं लेना। और कोई प्रश्न किसी का? एकादशी भगवान को प्रिय तिथि है, इसकी एक घटना है, भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, ये एक देवी है, तो चूंकि एकादशी के दिन वो उत्पन्न हुई थी भगवान के शरीर से, है? और भगवान के शत्रु मूर्खा उसने वध किया था, तो इसलिए भगवान ने उसको वरदान दिया कि आज की तिथि ये तुम्हारी तिथि है, भगवान ने वो तिथि एकादशी तिथि उस देवी को दे दी और कहा कि आज से तुम एकादशी के नाम से तुम लोक में प्रसिद्ध होगी और जो लोग तुम्हारा व्रत करेंगे जीवन भर, तो इस जीवन के अंत में विमेर धाम में आएंगे। इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय एकादशी का व्रत करना है। लक्ष्मण के बारे में कथा है, ये गर्ग संहिता में आती है कि भगवान रात में गोपियों के घर जाते थे, तो एक बार रात में देर से आए तो गोपियों ने कहा कि आप इतनी देर से आए, आपकी प्रतीक्षा हमें तो बहुत कष्टदायक मालूम पड़ती है, आपने देर क्यों लगाई। तो भगवान कहते हैं कि मैं दुर्वासा मुनि की सेवा कर रहा था, वो मेरे गुरु हैं। तो गोपियों ने कहा कि आप संसार भर के गुरु हैं, आपके भी गुरु हैं क्या। भगवान कहते हैं हाँ मेरे भी गुरु हैं। तो गोपियों ने कहा तो हम आपके गुरु का दर्शन करना चाहती हैं, कहाँ पर है। भगवान ने बताया कि जमुना पार करके तुम जाओगी अशोक वन में, वो ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब सवेरे जैसे होए तो हम जमुना जी को पार करें, आपके गुरु का दर्शन करें। लेकिन जमुना जी को कैसे पार करेंगे, भगवान कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं जमुना पार करने में, केवल इतना कह देना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो जमुना जी हमें मार्ग दे दें। तो गोपियों ने कहा ठीक है। तो जब जमुना जी के सामने गई और कहा कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो जमुना जी हमको रास्ता दे दीजिए, तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया और गोपियां ऐसे चली जैसे कि पैर भी उनके भीगे नहीं, बड़े आराम से जमुना जी को पार कर लिया। अब वहां दुर्वासा मुनि के दर्शन किए तो अपने अपने हाथों में पूरा भोजन की थाल लेके आई थी, तो सब लड़ रही आपस में और सब कहती है कि पहले मैं खिलाऊंगी पहले मैं खिलाऊंगी। दुर्वासा मुनि ने देखा कह रहे सब लड़ रही हैं, तो बोले नहीं नहीं तुम लोग लड़ो नहीं, मैं अपना बड़ा मुंह खोल लेता हूँ और मेरे मुंह में अपने थाल सब पलट दो, अपने थाल का जितना भोजन है सब मेरे मुंह में डाल दो, एक साथ डाल दो। तो करोड़ों गोपियां थी तो करोड़ों थाल इकट्ठा उन्होंने अपने मुंह में डलवा लिया और खा गए, बहुत दिनों के भूखे थे सब खा गए। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद फिर गोपियां चिंता में पड़ गई कि अब जमुना जी कैसे पार करें, उधर से तो पार कर लिया था जमुना जी को जैसे कृष्ण ने जैसा बताया वैसा किया, अब यहां कैसे पार करें। तो दुर्वासा मुनि बोले तेरे कोई दिक्कत नहीं जमुना पार करने में, जमुना जी से ये कह दो कि दुर्वासा मुनि अगर केवल दूर्वा खाते हैं और कुछ नहीं खाते तो जमुना जी रास्ता दे दीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया और बड़े आराम से जमुना जी को पार कर लिया। अब रात में जब भगवान आए और पूछा बोलो तुम लोगों ने हमारे गुरु के दर्शन किए, बोले हाँ दर्शन तो किए लेकिन गुरु और चेला दोनों के दोनों मिथ्यावादी हो दोनों है? आप कहते हो आप बाल ब्रह्मचारी हो है? जबकि आप रात में हमसे मिलने आते हो और आपके गुरुजी करोड़ों थाल खा गए भोजन का और कहते हैं कि दुबा ही केवल खाते हैं। तब भगवान ने उनको उपदेश किया, भगवत गीता के कुछ श्लोक भगवान ने उनको सुनाए उपदेश के रूप में और भगवान कहते हैं निराशीर यत चित्तात्मा तिक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना आत्मति जल मिशम। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भोगों की आशा नहीं है, सब प्रकार से भोगों को त्याग दिया है तो शरीर से ही केवल अगर कर्म कर रहा है तो उसको पाप नहीं लगता। भगवान इस तरह से समझाते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो मत्सरः समा सिद्धाव सिद्धवता कृत्वापि अनुमद्यते। जो बिना प्रयास के जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में ही संतुष्ट रहे, सुख दुख के द्वंद्व से बिल्कुल अतीत है, ईर्ष्या रहित है, तो वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उस कर्म से नहीं बंधता है। और भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूं, इसमें मेरा कोई सुख नहीं है, मैं तुम लोगों के सुख के लिए ही मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ। इस तरह से भगवान ने जो है स्पष्ट किया और कहा कि दुर्वासा मुनि जो है केवल दुबा का ही रस पीने वाले हैं, लेकिन तुम लोगों के लाभ के लिए ही उन्होंने तुम्हारा भोजन खाया था, इसलिए उन्होंने वास्तव में वो नहीं खाया, अपने भोग के लिए उन्होंने भोजन नहीं खाया, तुम्हारे लाभ के लिए खाया है? तो इसलिए दुर्वासा मुनि में कोई दोष नहीं लगता है भोजन का। इस तरह से उन्होंने समझाया। और कोई प्रश्न किसी का? एक तो अष्टांग योग की समाधि है, ठीक है ना। अष्टांग योग में जो है आठ अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो वो जो समाधि होती है उसमें तो व्यक्ति का शरीर निश्चिष्ट होता है, उसमें शरीर में कोई चेष्टा नहीं होती है, एक आसन पर बैठा हुआ है, हिलता डुलता नहीं है, वो समाधि होती है। लेकिन जो भगवत गीता में समाधि भगवान ने बतलाई है उसमें तो भगवान ने सब बताया कि वो सब काम करता है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को भगवान कहते तुम समाधि में स्थित हो और युद्ध करो, है ना। तो जब भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो वो समाधि कराते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की श्री श्री गौणताय की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की
जय। जय जय
हरे कृष्णा सुन कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।